उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा का उद्भव एनबीपी पात्र परंपरा की चमक एवं पॉलिश से प्रभावित होकर कुछ विद्वानों ने यह मत प्रतिपादित किया था कि यह मृदभांड परंपरा एक विदेशी पात्र परंपरा है। भारत में पश्चिमी देशों से इसका आयात हुआ। इन विद्वानों के अनुसार यूनान की ब्लैक ग्लेज्ड वेयर को भारतीय उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा की जन्मदात्री माना जाना चाहिए, किंतु समुचित प्रमाणों के अभाव में यह मत सर्वमान नहीं है। ब्लैक ग्लेज्ड वेयर की तिथि चौथी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। इसके विपरीत भारत में एनबीपी पात्र परंपरा की तिथि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रथम चरण में मानी जाती है। इस प्रकार कालक क्रम की विसंगति के कारण यूनान की पात्र परंपरा से प्रेरणा पृष्ठ संख्या 564 प्रश्न ही नहीं उठता है। विलर ने इसकी धातु की तरह की चमकीली पॉलिश के कारण पारसिक प्रभाव की संभावना प्रकट की है। लौह युगीन मृदभांड परंपरा होने के कारण लोहे के रंग से मिलती जुलती पात्र परंपरा के बर्तनों के प्रति तत्कालीन लोगों में सहज आकर्षण रहा होगा। एम व्हीलर का पारसिक प्रभाव का मत बहुत सार्थक और युक्ति युक्त नहीं प्रतीत होता है। वस्तुतः गंगा घाटी में एनबीपी की प्रचुरता इस बात की द्योतक है कि मृदभांड परंपरा विशुद्ध भारतीय है तथा इसके निर्माण में स्वदेशी स्थानीय कुंभकारों के हस्तलाघव एवं कुशलता का प्रमुख हाथ था। बीबी लाल ने हस्तिनापुर की अपनी आख्या रिपोर्ट में यह मत व्यक्त किया था कि संभवतः चित्रित धूसर पात्र परंपरा के साथ मिलने वाले कृष्ण लेपित पात्र परंपरा ब्लैंक स्लिप्ड वेयर ही एनबीपी पात्र परंपरा की जननी रही होगी। यद्यपि कृष्ण लेपित पात्र परंपरा अनेक दृष्टियों से एनबीपी पात्र परंपरा से भिन्न है, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि चित्रित धूसर पात्र परंपरा के काल के लोग पॉलिश युक्त पात्र बनाने का अभ्यास करने लगे थे। उपर्युक्त मत को स्वीकार करने में भी कतिपय कठिनाइयां हैं। उदाहरणार्थ चित्रित धूसर पात्र परंपरा का प्रसारक क्षेत्र मुख्यतः हरियाणा, पंजाब, दक्षिण पूर्व राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। यदि एनबीपी पात्र परंपरा चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा से उद्धृत हुई होती तो एनबीपी परंपरा से संबंधित बहुसंख्यक पुरास्थल उसी क्षेत्र में होने चाहिए, परंतु वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। सर्वत्र चित्रित धूसर पात्र परंपरा के बाद एनबीपी पात्र परंपरा नहीं मिलती है। मध्य गांगेय क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में कृष्ण लोहित पात्र परंपरा के पहले के स्तरों से एनबीपी मिलती है। एनबीपी पात्र परंपरा से संबंधित पुरास्थल मुख्यतः मध्य गंगा घाटी में दिखलाई पड़ते हैं। अतः यह प्रश्न सहज ही उठ खड़ा होता है कि क्या इस पात्र परंपरा का उद्भव मध्य गंगा घाटी में हुआ। 20वीं सदी के छठे दशक में किसी पुराविद को इस बात की जानकारी नहीं थी कि मध्य गंगा घाटी में एनबीपी से पहले कोई पात्र परंपरा रही होगी। हस्तिनापुर के उत्खनन के बाद मध्य गंगा घाटी तथा उत्तरी विंध्य क्षेत्र में विभिन्न पुरास्थलों पर जो उत्खनन कार्य हुए हैं उनसे हमारी पुरातात्विक जानकारी में वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में ताम्रपाषाणिक स्तरों से कृष्ण लेपित मृदभांड मिलते हैं। ये पात्र एनबीपी के पूर्ववर्ती स्तरों से प्राप्त होते हैं जो कालांतर में एनबीपी के स्तरों में भी मिल जाते हैं। इस आधार पर इस बात की प्रबल संभावना है कि मध्य गंगा घाटी और उत्तरी विंध्य क्षेत्र की कृष्ण लेपित पात्र परंपरा से एनबीपी का सूत्रपात हुआ। इसी क्षेत्र में एनबीपी पात्र परंपरा से संबंधित बहुसंख्यक पुरास्थल दिखलाई पड़ते हैं। यही नहीं, इस क्षेत्र के पुरास्थलों पर एनबीपी पात्रखंड बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं। पृष्ठ संख्या 565, उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा की संस्कृति। उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा की संस्कृति भारतीय पुरातत्व के इतिहास के एक अत्यंत उज्ज्वल अध्याय का सूत्रपात करती है। गांगेय क्षेत्र में इसी पात्र परंपरा के साथ द्वितीय नगरीय क्रांति का इतिहास आरंभ होता है। लोहे के औजार बनाने के तकनीक के बाद व्यापक पैमाने पर लौह उपकरणों का निर्माण तथा प्रयोग संभवतः हुआ। संभव हुआ। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लौह तकनीक की प्रधानता वस्तुतः परिलक्षित होने लगी थी। लौह तकनीक के व्यापक प्रचलन का प्रभाव कृषि कार्य में ही नहीं बल्कि घरेलू उद्योगों तथा वास्तुकला पर भी पड़ा। इस प्रकार एक अत्यंत जटिल आर्थिक जीवन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। संबद्ध मृदभांड एनबीपी पात्र परंपरा के साथ साथ जनसाधारण द्वारा प्रयुक्त मृदभांड तथा दैनिक जीवन में काम आने वाली कई प्रकार की पात्र परंपराएं। रेखाचित्र 5 उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा संबद्ध मृदभांड पृष्ठ संख्या 566 भी मिलती है। उदाहरण के लिए एक मोटे गड़न के अनलंकृत धूसर मृदभांड थिक प्लेन ग्रे वेयर, 2 कृष्ण लेपित मृदभांड ब्लैक स्लिप्ड वेयर, 3 लाल रंग के मृदभांड रेड वेयर तथा 4 कृष्ण लोहित मृदभांड ब्लैक एंड रेड वेयर। बड़े बड़े घड़े मटके तसले नाद आदि बर्तन प्रकार इन पात्र परंपराओं में मुख्य रूप से मिलते हैं। इन मृदभांडों के नए नए प्रकार लोगों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करते थे। एनबीपी की तुलना में इन मृदभांडों की प्रचुरता इनके सहज सुलभ और उपयोगी होने का संकेत करती है। विभिन्न प्रकार के बर्तनों की बढ़ती हुई मांग से जनसंख्या वृद्धि भी परोक्ष रूप से इंगित होती है। लौह उपकरण उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में यद्यपि लोहे का प्रचलन चित्र धूसर पात्र परंपरा के काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हो गया था, लेकिन एनबीपी काल में लोहे के व्यापक स्तर पर प्रयोग के संकेत मिलते हैं, जिससे लौह अयस्क को पिघलाने और प्राप्त लोहे को पीटकर उपकरण बनाने की तकनीक चित्र 6 कौशाम्बी लौह बाड़ाग्र सौजन्य प्राचीन इतिहास विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय पृष्ठ संख्या 567 में प्रगति परिलक्षित होती है। लोहे के उपकरणों के बड़े पैमाने पर उपयोग से तत्कालीन लोगों के आर्थिक जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। प्रमुख लौह उपकरणों में बाड़ फलक भाले के शीर्ष बल्लम शीर्ष बर्छी कटार चाकू हंसिया खुरपी कीले बसुला छेनी कड़ाही तथा दीपक आदि हैं। उत्खनन से प्राप्त लौह धातुमल धातु बिगलन का संकेत देते हैं। चित्र 7 कौशाम्बी लौह हसिया कुल्हाड़ी एवं अन्य उपकरण सौजन्य प्राचीन इतिहास विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय। खेती के कार्यों विशेषकर जुताई के कार्य में लोहे के बने हुए फालों आयरन प्लग शेयर्स के प्रयोग से गांगेय क्षेत्र की चूने से युक्त कड़ी जलोढ़क मिट्टी पर कृषि कार्य अधिक आसान हो गया। लोहे के बर्मे ड्रिल्स बसुले छेनियों एवं रुखानियों के निर्माण से विभिन्न शिल्प कार्यों विशेषकर लकड़ी की वस्तुओं के बनाने में विशेष प्रगति हुई। लोहे की लोकप्रियता के कारण तांबे का प्रयोग अपेक्षाकृत सीमित होता गया। तांबे का प्रयोग अब सिक्कों के निर्माण अंजन शलाकाओं खिलौनों मुद्रिकाओं रिंग्स तथा मनकों आदि के बनाने में किया जाने लगा। पृष्ठ संख्या 568 कृषि तथा पशुपालन। कृषि इस काल के लोगों की जीविका का प्रमुख आधार प्रतीत होती है। काफी विस्तृत भूभाग में खेती की जाने लगी थी। चावल गेहूं जौ तथा दलहन आदि इस काल के प्रमुख खाद्यान्न थे। पशुपालन इनके आर्थिक जीवन का दूसरा प्रमुख आधार था। पालतू पशुओं में गाय बैल भैंस भेड़ बकरी घोड़े तथा सुअर आदि की गणना की जा सकती है। इन पशुओं की हड्डियां विभिन्न पुरास्थलों के उत्खनन से प्राप्त हुई हैं। समाज का काफी बड़ा हिस्सा संभवतः मांसाहारी था। पशुओं की कुछ हड्डियों का वध हलाल करने के निशान मिलते हैं। इस प्रकार पशुओं को केवल भारवाहन ड्रॉट के लिए ही नहीं पाला जाता था बल्कि घी दूध मांस के लिए भी उनकी उपयोगिता थी। मछेरे के जाल को डुबोने के लिए प्रयुक्त मिट्टी की बनी हुई गोलियां मछली पकड़ने का परोक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं। जंगली पशुओं जैसे हिरण आदि का शिकार भी किया जाता था। सिक्के एनबीपी संस्कृति की एक अन्य प्रमुख विशेषता सिक्कों के सर्वप्रथम प्रचलन को माना जा सकता है। आर्थिक जीवन में जटिलता आ जाने के फलस्वरूप वस्तु विनिमय में परेशानी होने लगी। आर्थिक आवश्यकताओं के बढ़ते दबाव से सिक्कों का चलन शुरू हुआ। ताम्र और रजत के बने हुए आहत सिक्के चित्र 8 कौशाम्बी आहत सिक्के सौजन्य प्राचीन इतिहास विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय। पंच मार्क्ड क्वाइंस भारत के प्राचीनतम सिक्के माने जाते हैं। तांबे तथा चांदी से निर्मित लेख रहित ढली हुई मुद्राओं की गणना आहत मुद्राओं के समकालिक सिक्कों के रूप में की जा सकती है। सिक्कों के पृष्ठ संख्या 569, चित्र 9, कौशाम्बी, लेख रहित ढले हुए सिक्के, सौजन्य प्राचीन इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रचलन के साक्ष्य एनबीपी के मध्यवर्ती स्तरों से मिलते हैं। सिक्कों के प्रचलन से एनबीपी पात्र परंपरा के काले व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में विशेष उन्नति हुई। व्यापारियों और ब्याज पर रुपया उधार देने वाले सेठ साहूकारों का उल्लेख 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के नगरीय समाज के एक अभिन्न अंग के रूप में तत्कालीन साहित्य में भी मिलता है। वास्तुकला, भवन निर्माण कला के क्षेत्र में भी इस काल में उल्लेखनीय प्रगति हुई, तथापि इस दिशा में सर्वत्र एक जैसी प्रगति नहीं हुई। अधिकांश उत्खनन समिति तथा सूच्यांक प्रकार के हैं, इसलिए वास्तुकला के विषय में प्राप्त जानकारी अपूर्ण एवं एकांगी है। यद्यपि इस काल में भी मिट्टी, घास फूस और बांस बल्ली के बने हुए कच्चे मकानों का निर्माण के लिए अधिकाधिक मात्रा में होने लगा। हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, मथुरा, कौशाम्बी, राजघाट, उज्जैन तथा बहाल के उत्खननों से प्रमाण मिलते हैं। नगरों की सुरक्षा के लिए रक्षा प्राचीर तथा परिखा के निर्माण के प्रमाण अहिच्छत्र, कौशाम्बी, राजगृह तथा उज्जैन आदि से प्राप्त हुए हैं। रक्षा प्राचीरों का निर्माण मिट्टी के बने हुए भीटों के रूप में किया जाता था। कभी कभी रक्षा प्राचीरों की बाहरी सतहों पर पकी हुई ईंटें चुन दी जाती थी ताकि रक्षा प्राचीर और अधिक मजबूत हो जाए। इस काल के नगरों के कुछ भवनों में स्वच्छता तथा सफाई की दृष्टि से मृत्तिका वलय कूपों पृष्ठ संख्या 570, चित्र 10, कौशाम्बी, घोषिताराम बौद्ध विहार, सौजन्य प्राचीन इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चित्र 11, कौशाम्बी, रक्षा प्राचीर, सौजन्य प्राचीन इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पृष्ठ संख्या 571, चित्र 12, रोपण, मृत्तिका वलय कूप, सौजन्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, चित्र 13, कौशाम्बी, सछिद्र घड़ों से निर्मित सोक्ता गड्ढा, सौजन्य प्राचीन इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पृष्ठ संख्या 572 एवं सछिद्र घड़ों को जोड़कर सोक्ता गड्ढों का निर्माण किया जाता था। स्वच्छता की ऐसी व्यवस्था कुछ खास घरों में ही मिलती है। कौशाम्बी में पकी, चित्र 14, कौशाम्बी, मिट्टी के पाइप की नाली, सौजन्य प्राचीन भारतीय प्राचीन इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ईंटों की बनी हुई ढकी और खुली नालियां तथा मिट्टी के पाइपों, पोटरी पाइप ड्रेन्स की बनी हुई सार्वजनिक नालियां इस काल के स्तरों से मिली हैं। चित्र 15, कौशाम्बी, राजमार्ग, सौजन्य प्राचीन इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इस प्रकार के प्रबंध सफाई एवं स्वच्छता के परिचायक हैं। कौशाम्बी से राजमार्ग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पृष्ठ संख्या 573, मृण मूर्तियां। एनबीपी संस्कृति के काल में मृण मूर्तियों के निर्माण के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हो चुकी थी। पूर्ववर्ती चित्रित दूसर पात्र परंपरा काल की मूर्तियों की तुलना यदि इस काल की मूर्तियों से की जाए तो यह भेद अधिक स्पष्ट हो जाएगा। हाथी, घोड़े, वृषभ, कुत्ते, भेड़ा, हिरण आदि पशुओं और कच्छप, सर्प आदि सरीसृपों एवं चिड़ियों की हस्तनिर्मित मूर्तियां मिलती हैं। चित्र 16, कौशाम्बी, हाथी की मृण मूर्तियां, सौजन्य प्राचीन इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। पशुओं की मृणमूर्तियों का निर्माण अत्यंत कुशलता के साथ किया गया है। आँखों को एक गोले वृत्त के अंदर छेद करके बनाया गया है। पशुओं की मृणमूर्तियों को छोटे छोटे गोलों सरलेट्स छोटे छोटे गोलों सर्कल्स के ठप्पे लगाकर पंच गहरे रेखांकन डीप इंसिस्ड लाइंस का तथा किसी चीज से दबाकर बनाई गई पत्तियों इम्प्रेस्ड लीफ डिजाइंस के द्वारा सजाया सवारा गया है। अधिकांश मृणमूर्तियां लाल रंग की हैं, जिनके ऊपर गेरू के गहरे घोल का प्रलेप रेड स्लिप चढ़ाया गया है। धूसर तथा काले रंग की पशु मृणमूर्तियों के उदाहरण भी अहिच्छत्र मथुरा एवं वैशाली आदि से मिले हैं। यह उल्लेखनीय है कि बक्सर से पीले रंग की पड़ी रेखाओं से अलंकृत पशु मृणमूर्तियां प्राप्त हुई हैं। पृष्ठ संख्या 574। पशुओं की मृणमूर्तियों के अलावा मानव मृणमूर्तियां भी उपलब्ध हुई हैं। प्रायः अधिकांश पशु मृणमूर्तियां हाथ से बनाई हुई मिलती हैं। मानव मृणमूर्तियों के मुख को सांचे मोल्ड में ढालकर कास्ट बनाए गए कतिपय नमूने भी मिले हैं। चित्र 17 कौसाम्बी मानव मृणमूर्तियां सौजन्य प्राचीन इतिहास विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय पृष्ठ संख्या 575। शेष भाग हस्त निर्मित है। मानव मृणमूर्तियों में हाथों और पांवों का निर्माण स्टम्प अथवा डंडे के रूप में किया गया है। आँखों को एक छोटे से वृत्त अथवा केवल रेखांकन के द्वारा और बालों को प्रदर्शित करने के लिए सिर पर गहरी रेखाएं खींच दी गई है तथा नाक बनाने के लिए मिट्टी को चुटकी से दबा दिया गया है। परवर्ती चरण में बड़े बड़े कर्णपटल और उनमें चक्राकार कर्णफूल, गले में भारी कांदार हारावली आदि का निर्माण चिपकवा विधि से किया गया है। स्त्री मृणमूर्तियों को भव्य शिरोवेश भूषा कर्णाभरण एवं हारावली से अलंकृत किया गया है। स्त्री मृणमूर्तियों के वस्त्रालंकरण पर्याप्त तथा लहराते हुए बनाए गए हैं। हस्तिनापुर के उत्खनन से एनबीपी परंपरा के परवर्ती स्तर से प्राप्त प्रोषित पतिका नवोढ़ा की मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है। ऊर्ध्व वसना तनवंगी के प्रतुल नितंबों तथा पीन पयोधरों का रूपायन बड़ा ही मनोहर बन पड़ा है। इसके बाएं हाथ में एक तोता बैठा हुआ है, दाहिने हाथ में फलों का एक गुच्छा है। ऐतिहासिक काल में ऐसी कथा वस्तु को लेकर मृणमूर्तियां ही नहीं अनेक प्रस्तर मूर्तियों का भी निर्माण हुआ है। हस्तिनापुर तथा कुम्भरार के उत्खनन से प्राप्त कतिपय मृणमूर्तियों को तनवंगी पृथुल नितंबर छोटे छोटे पाँव वाली बनाया गया है। हस्तिनापुर से प्राप्त पशु मानवीय मृणमूर्ति की भी इस संदर्भ में चर्चा की जा सकती है। इस मृणमूर्ति की मुखाकृति मानव की और शरीर पशु का है। ठुड्डी को चुटकी से दबाकर इस प्रकार बनाया गया है ताकि वह दाढ़ी की भांति। चित्र 18 कौसाम्बी रथ सौजन्य प्राचीन इतिहास विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय पृष्ठ संख्या 576। प्रतीत हो इस मृणमूर्ति के पूरे शरीर को गोला कर छापे लगाकर सजाया गया है। गर्दन के निचले भाग में एक छिद्र बना है जिसमें संभवतः एक डोरी डालकर इसको आगे पीछे झुलाया जा सकता है। मृणमूर्तियों का निर्माण खिलौनों के रूप में तो होता ही रहा होगा, लेकिन इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यदि इनमें से कुछ के निर्माण के पीछे धार्मिक विश्वासों का भी कुछ हाथ रहा हो। मृणमूर्तियों के अतिरिक्त एनबीपी के स्तरों से प्राप्त लेख रहित सिक्के ढालने के सांचे का भी उल्लेख किया जा सकता है। मिट्टी के बनी हुई राजमुद्राएं सिल्स राजमुद्रांक सीलिंग्स कुंभकार की थापी पोटर्स डिबर्स और कुंभकार के ठप्पे पोटर्स स्टैंप भी प्राप्त हुए हैं। आरे या तीलियों वाले रथ के पहिए और विविध प्रकार के रथ के नमूने भी मिले हैं। मनके एनबीपी पात्र परंपरा के लोगों ने अपनी परिष्कृत अभिरुचि का परिचय विभिन्न प्रकार के आभूषणों के निर्माण के माध्यम से दिया है। उदाहरण के लिए विभिन्न पुरास्थलों के उत्खनन से एनबीपी के स्तरों से माणिक्य के मनके चित्र 19, कौशाम्बी मणिमाणिक्य के मनके सौजन्य प्राचीन इतिहास विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय और चूड़ियाँ कड़े तथा अंगूठियाँ मिली हैं। तांबड़ा पत्थर गोमेद तथा कांच के बने हुए बेलनाकार गोलाकार एवं त्रिभुजाकार मनके अधिक प्रचलित थे। चूड़ियाँ बनाने के लिए तांबे का विशेष रूप से उपयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त मिट्टी माणिक्य कांच हाथी दांत हड्डी आदि के बने हुए मनके चूड़ियाँ और अंगूठियाँ मिली हैं। पृष्ठ संख्या 577 चित्र 20 कौशाम्बी मिट्टी के मनके सौजन्य प्राचीन इतिहास विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय। प्रसादन सामग्री में अंजन शलाकाएं तांबे की बनी हुई पीने हड्डी और हाथी दांत की बनी हुई कंगिया नख कटक नील पेरर्स एवं ऋण्मय देहमर्दक या झावा आदि की भी गणना अन्य उल्लेखनीय पुरावशेषों में की जा सकती है। हड्डी के उपकरण एनबीपी पात्र परंपरा के उत्खनित पुरास्थलों से बहुत बड़ी संख्या में हड्डी के बने हुए उपकरण प्राप्त हुए हैं। इनको पुराविदों ने बाण फलक चित्र 21 कौशाम्बी हड्डी के उपकरण सौजन्य प्राचीन इतिहास विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय पृष्ठ संख्या 578 एरो पॉइंट्स अथवा अस्थि निर्मित वेधक बोन पॉइंट्स तथा लेखनी स्टाइलस आदि नाम दिए हैं। यदि इन्हें बाड़फलक मान लिया जाए तो यह संभावना है कि पक्षियों आदि का शिकार करने में इनका उपयोग होता रहा होगा। यदि स्टाइलस या लेखनी कहे तो फिर यह मानना पड़ेगा कि यह लिखने के काम में आती रही होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि एनबीपी काल में लोगों के सांस्कृतिक जीवन में पर्याप्त प्रगति हो चुकी थी। जीवन अत्यंत जटिल हो चुका था। नगरीय क्रांति के फलस्वरूप भौतिक जीवन काफी समृद्ध हो गया था।